मंगलाचरण करू. नमो अरिहंताणं नमो सिंहाणं नमो आयरियाणं नमो चौथी ढाल का एक बार अपन फर्स्ट से रीडिंग करते हैं, उसके बाद जो छठी ढाल पिछले क्लास में हुई थी उसको एक बार रिवाइज करते हुए फिर सेवन्थ एट्थ को स्टार्ट करेंगे. सम्यक श्रद्धा धारी पुनी चौथी ढाल का पहला श्लोक. सम्यक श्रद्धा धारी पुनी सेवा हु सम्यक ज्ञान सपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान. सम्यक साधे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो लक्षण श्रद्धा जान दूह में भेद अभादो. सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई. तास भेद दो है परोक्ष पर तच तिन माही मत श्रुत दो परोक्ष अक्ष मन ते उप जाहि. अवधि ज्ञान मन पर अज दो है देश प्रत्यक्षा द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिए सच्चा. सकल द्रव्य के गुण अनंत पर आए अनंता जाने के काल ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवार. कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म हरे. तिसे सहज करे से मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रह विक उपजायो. निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो. ताते दिन वर कथित तक अभ्यास करीजे संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे. यह मानस पर आय सुकुल सुनि भोजन वाणी लिह मिल गए न मिले सुमर जो समानी. शाड़ाला का आपका विषय चल रहा है. अगर कोई संक्षिप्त में कहे कि छह डाला को छह लाइनों में बताओ तो आप कैसे बताएंगे? छह डाला में अपन चौथी डाल तक आ गए हैं. अगर कोई बोले जैसे कहते हैं छह डाला में गागर में सागर भरा हुआ है, ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, सबको याद भी सबके. तो कोई अगर ऐसे एग्जाम में आ जाए डिस्क्राइब छह डाला इन शॉर्ट इन सिक्स सेंटेंस तो क्या बताएंगे?
कारण क्या है?
छह ढाला का अपन को एक एक ढाल बिल्कुल क्लियर करना है. पहली ढाल चार गति के दुख, बस पहली ढाल चार गति के दुख का वर्णन. दूसरी ढाल दुख का कारण, वो जो चार गति के दुख मुझे मिले उन दुखों का कारण, कि वो जो मुझे दुख मिले उन दुख का रीजन क्या था उसके पीछे. तीसरी ढाल उन दुख से दूर होने का प्रारंभिक उपाय, जो उपाय जहाँ से प्रारंभ होता है तो उपाय प्रारंभ होता है सम्यक दर्शन से. तीसरी ढाल दुख से दूर होने का प्रारंभिक उपाय सम्यक दर्शन का स्वरूप. चौथी ढाल सम्यक दर्शन के होने के पश्चात जो ज्ञान की पूर्णता होती है तो उस सम्यक ज्ञान का वर्णन. पांचवी ढाल सम्यक दर्शन ज्ञान होने के बाद जब वैराग्य की वृद्धि होती है तब मुनिराज या जो बारह भावना भाते हैं वैराग्य की वृद्धि करने के लिए उन बारह भावनाओं का वर्णन. और अंतिम ढाल सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और वैराग्य के पूर्वक जब अंतर में चारित्र की पूर्णता की अवस्था आती है तो पहले एक देश चारित्र सकल चारित्र यथाक्या चारित्र की जो अवस्था जाती है वो अंतिम ढाल में, मतलब पूरा मोक्ष मार्ग. जीव जो अनादिकाल से मिथ्यात्री है उसको पहली ढाल से प्रारंभ किया और अंतिम छठवीं ढाल पे पूरे उसके मोक्ष का मोक्ष के मार्ग तक पहुंचाया। यहाँ पर वापिस से छह डाल छह सेंटेंस। पहला सेंटेंस पहली डाल चार गति के दुख का वर्णन, दूसरी ढाल दुखों का कारण, तीसरी ढाल दुख से दूर होने का उपाय, चौथी ढाल सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान का वर्णन, पांचवी ढाल बारह भावनाओं का वर्णन वैराग्य वाली बारह भावना, और छठी ढाल सम्यक चरित्र। क्योंकि मोक्ष मार्ग की पूर्णता किसका है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की पूर्णता का नाम मोक्ष मार्ग है। तो ये जो छह डाल है इसमें जो मिथ्यात्वी है, मिथ्यात्वी कौन है, मैं, हम लोग है, बराबर ना, हम लोग मिथ्यात्वी है, ऐसा नहीं समझना कि किसी के लिए लिख दिया है, हमारे लिए खुद के लिए। तो जो जीव मिथ्यात्वी अर्थात मैं अभी कैसी अवस्था में हूँ, मिथ्यात अवस्था में हूँ, तो मैं अभी कौन सी ढाल पे हूँ, पहली ढाल पे हूँ, मैं अभी कौन सी ढाल पे हूँ, पहली ढाल पे, तो पहली ढाल में जो चार गति है तो मैं अभी कौन सी गति में हूँ, मनुष्य गति में, और मैंने इन चारों गतियों में चक्कर लगाया है, ऐसी कोई गति नई नहीं है कि जहाँ मैं नहीं गया, एकमात्र जिसको अपन पंचम गति कह देते हैं उस गति में मैं आज तक नहीं गया, क्योंकि वहां जाने के बाद कोई उसके बाद वापस नहीं आता, वो एक पूर्णता की अवस्था हो जाती है। तो अभी मैं कौन सी ढाल पे हूँ, पहली ढाल पे हूँ, क्योंकि अभी मैं चारों गति के दुख को भोग रहा हूँ। साथ में ये भी लगा सकते हैं कि मैं दूसरी ढाल को जानता हूँ, क्यों जानता हूँ, क्योंकि मुझे ये जो दुख मिल रहे हैं उस दुख का रीजन मुझे मालूम पड़ रहा है। अभी मैंने इतना पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ ना कि ये जो मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, इनके कारण मैं इस संसार में भटक रहा हूँ, इन चारों गतियों में भटक रहा हूँ। तो मैं पहली ढाल की पोजीशन पे खड़ा हूँ और दूसरी ढाल को मैं जानता हूँ, बराबर है, दूसरी ढाल को मुझे मालूम है कि इसको मुझे छोड़ना है, इस मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को छोड़ना है। अब छोड़ना तो है, लेकिन वो छूटेगा कैसे, उसके अगेंस्ट में कुछ आएगा तो छूटेगा ना। मिथ्या दर्शन कैसे छूटेगा, जब मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। मिथ्या ज्ञान कब छूटेगा, जब मुझे सम्यक ज्ञान होगा। मिथ्या चारित्र कब छूटेगा, जब मुझे सम्यक चारित्र होगा। तो अब मैं पहली दूसरी ढाल को तो जानता हूँ, अब मुझे जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है, जो तीसरी ढाल से प्रारंभ हुआ और छठी ढाल के अंत में जो मोक्ष मार्ग खत्म होगा, तो अब मैं उसको जान रहा हूँ। तो तीसरी ढाल में मैंने सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा, चौथी ढाल में हमने प्रारंभिक पांच छह गाथाओं में सम्यक ज्ञान के बारे में जाना। देखिए पांचवी जो ये जो छठी गाथा जो आपने पढ़ी, ये पहले पांचवी गाथा के अंदर एक बात बताई है, पांचवी जो है ना उसमें नीचे की लाइन देखिए, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रहविक उपजायो तय निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो, कि ऐसा भी नहीं है कि मैंने आज तक मुनि दशा धारण नहीं की, जो मुनि अवस्था है ऐसा नहीं है कि वो मैंने आज तक धारण नहीं की, और कैसी धारण की, मात्र बाहर वाली ही नहीं, इतनी ज्यादा रूप में कि मैं जब तपस्या में खड़ा हूँ तब कोई मेरी चमड़ी उधेड़ दे, उसमें मिर्च डाल दे, नमक मिर्च डाल दे, तो भी मेरी आंख झपके नहीं या मेरी आंख के अंदर लाल नहीं हो, आंख के कोर लाल नहीं हो, इतनी ज्यादा तीव्र मैंने मुनि दशा भी धारण की। लेकिन क्या हुआ, पै निज आत्म ज्ञान बिना, लेकिन आत्मा के ज्ञान के बिना, आप विचार करिए, ऐसी मुनि अवस्था कि हमने ऐसी मुनि अवस्था धारण की कि जहाँ कोई मेरे अंग को काट दे तो भी मैं ध्यान से नहीं हटूं, कोई मुझे छेद भेद दे तो भी मैं ध्यान से नहीं हटूं, तो वहाँ क्या कमी रह गई थी, एकमात्र जो अपना ज्ञान था, वहाँ ज्ञान है उस जीव को, क्योंकि ज्ञान तो सबके अंदर, लेकिन मान्यता क्या है कि ये मुनि दशा मुझे मोक्ष को दिलाएगी, ये जो मान्यता है उसकी मान्यता क्या है कि मैंने ये जो रूप धारण किया है, मैंने ये जो मुनि अवस्था धारण की है, ये अवस्था मुझे मोक्ष को दिलाएगी, तो बस यही एक शल्य जो ये अटकन है उसके कारण उसे मोक्ष नहीं होता। क्योंकि मोक्ष वास्तव में क्या है, अपने आत्म ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष मिलता है, कोई बाहर की अवस्था नहीं, कोई बाहर की क्रिया से नहीं, तो वो जो अवस्था में अटका है उसके कारण उसका मोक्ष वहाँ पर बाधित हो रहा है। तो फिर यहाँ जो बात बताई कि पैनिज आत्म ज्ञान बिना, कि आज तक मैंने बाहर का सब कुछ किया लेकिन अपने स्वरूप को जो देखा नहीं, अपना स्वरूप कैसे, जैसे अपन लोकल ट्रेन में जाते हैं, सब लोगों ने मोस्टली ट्रेवल किया लोकल ट्रेन में। अब लोकल ट्रेन में जब चढ़ते हैं ना तब क्या होता है, एकदम से फ्लो आता है, धक्का लगता है। अब जो सबसे लास्ट का जो बंदा है जिसके हाथ में खाली एक छोटा सा गेट का कोना है या सबसे लास्ट वाला हैंडल आ गया हाथ में, अब उसको तकलीफ तो हो रही है, उसको तकलीफ हो रही है, आप बोलो कि छोड़ दे, तकलीफ हो रही है तो छोड़ दे, तो छोड़ेगा कि नहीं? तकलीफ हो रही है ना, बिल्कुल लटका हुआ है उसको, जरा भी उसको पैर भी रखने की जगह नहीं मिल रही, एक पैर के सहारे पे मलाड से लेकर पार्लर तक अटका हुआ खड़ा है, आप उसको बोल दो इतनी तकलीफ हो रही है तो छोड़ क्यों नहीं देता है, तो छोड़ेगा कि नहीं? क्यों नहीं छोड़ेगा? उसे पता है कि अगर मैंने वो कुंदा छोड़ दिया या मैंने वो गेट छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा, गिर जाऊंगा। गिरने का भय नहीं है, गिरने के बाद जो होगा क्या होगा कि मैं मर जाऊंगा, जो उसका जो मृत्यु का भय है कि इस मृत्यु के भय के कारण वो उस कुंदे को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ज्ञानी जीव, ज्ञानी जीव ने जो स्वभाव को पकड़ा हुआ है, अपने आत्म के स्वरूप को पकड़ा हुआ है, बाहर में ऐसा लगता है कई बार कि ज्ञानी इतना कष्ट सहन कर रहे हैं, कोई इतना उग्र से तपस्या करता है, जैसे गजकुमार मुंडराज के सिर पे जलती सिगड़ी रख दी पांडवों को गम, तो कोई बोले कि इतनी करने की क्या जरूरत है, छोड़ दो, तो वो क्यों नहीं छोड़ते? उनको पता है कि एक क्षण भी अगर मैंने अपने स्वभाव का आश्रय छोड़ा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं इन वापिस चारों गतियों का जो चक्कर है, जैसे मेरी मृत्यु जो है उसे बोलते हैं आत्मघात, जैसे आत्महत्या लौकिक का जो हत्या है शरीर की हत्या, लेकिन वास्तविक आत्महत्या कि जो हम अपने स्वभाव को भूल रहे हैं प्रतिशत, वो वास्तविक आत्महत्या है। तो जैसे वो व्यक्ति, उसको अपने शरीर का वो है ना, इसके लिए वो बिल्कुल लोकल ट्रेन का ऐसा कस के पकड़ रखा है कि कितना ही धक्का है, उधर से प्रेशर आया तो भी छोड़ेगा, कितना ही प्रेशर आ जाए, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक स्टेशन नहीं आ जाएगा या अंदर घुसने को नहीं मिलेगा तब तक वो उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है अगर थोड़ा सा भी छोड़ा और मैं गिरा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार है ज्ञानी जीव, जिनने एक बार सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति कर ली, जिनने अपने आत्मा का स्वरूप थोड़ा सा भी जान लिया, वो फिर उसको कभी भी छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि एक बार छूट गया तो मैं वापस से जो अनादि से चक्कर लगा रहा हूँ वो हो जाएगा। तो वही बात यहाँ कही है कि आज तक मैंने बाहर में तो सब किया है लेकिन अपने आत्मा का ज्ञान वास्तविक नहीं होने के कारण मुझे अभी तक किंचित मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो अब सुख की प्राप्ति कैसे होगी? यहाँ तक तो बता दिया कि सुख की प्राप्ति नहीं हुई, अब तक मैंने सब कुछ किया, पहले उसको लगता था कि मैंने कुछ किया नहीं होगा, मैंने जैसे आप पहले किसी को जनरली लगता है कि मोक्ष जाना है तो मुनि अवस्था धारण करनी है, मोक्ष जाना है तो मुनि अवस्था धारण करनी है, और ये सत्य बात है, राजमार्ग यही है कि जब भी आपको मोक्ष होगा तो आपको मुनि अवस्था से ही मोक्ष होगा। लेकिन अगर कोई जैसे हम लोग ये समझे कि मैंने कभी मुनि अवस्था धारण नहीं की इसके लिए मुझे मोक्ष नहीं होता, तो उसका निराकरण पहले किया कि आज तक मैंने मुनि दशा भी अनंतों बार धारण की, और छोटी मोटी नहीं, उग्र से उग्र तप भी मैंने किया, लेकिन मेरे वास्तविक आत्मज्ञान को जाना नहीं, इसके लिए मैंने अब तक दुखी दुख पाए। अब छठवी गाथा में कि अब जो दुख मैंने पाए तो अब मैं उसको छोटू तो छोड़ के क्या करूं, तो वो बताया है, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। क्या कहा कि इसके लिए अगर तुम इस दुख को दूर करना चाहते हो तो क्या करो, जिनवर कथित, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। ये लाइन बिल्कुल सिंपल ही है, क्या लिखा है, ताते अर्थात इसलिए, जिनवर कथित, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया हुआ, जो सर्वज्ञ रीतराग हितोपदेशी जो जिनेन्द्र भगवान है उनके द्वारा बताया हुआ तत्व, जो सात तत्व है उनका अभ्यास करिए, उनका अभ्यास भेजी तू कर, और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। ये ज्ञान में, तू ज्ञान में जो संशय विप्र अनदर्शाई की जो अवस्था होती है, उनको छोड़कर आपो अर्थात अपने स्वरूप को लख अर्थात देखना, अपने स्वरूप को देखो। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समाने। देखिए इसमें नीचे ये जो तीसरी लाइन है क्या लिखा, यह मनुष्य पर्याय, अभी हमारी बात हम जो मनुष्य पर्याय के हैं, यह मनुष्य पर्याय के बाद सुकुल की जो उत्तम कुल की जो हमें प्राप्ति हुए है, तथा सुनिवो जिनवाणी की जिनवाणी सुनने का मौका भी हमको मिला। यह विधि गए न मिले, और एक बार अगर ये अवसर चला गया ना मिले, दोबारा नहीं मिलता, जैसे सुमणि जो उदधि समानी। देखिए चित्र नीचे बना हुआ है, सबसे नीचे जो चित्र बना हुआ है उसके अंदर एक व्यक्ति किनारे पे खड़ा हुआ, किसी में पीछे पेज पर है, एक व्यक्ति जो किनारे पे खड़ा हुआ एक पत्थर या एक मणि को फेंक रहा है, और वो मणि एक बार समुद्र में चली गई तो वो वापस मिलने वाली नहीं है, क्योंकि समुद्र को ऐसा तो है नहीं हमारे घर का टब है कि उसमें डाल दिया तो वापस निकाल दिया। समुद्र में तो आप जू बीच पे खड़े होके कुछ चीज फेंक दो पानी के अंदर थोड़ा अंदर जाके, तो बाद में मिलने वाली नहीं है। तो ऐसा ही यहाँ क्या है कि वो मणि क्या है, मणि मतलब मनुष्य पर्याय, ये सुकुल और ये जिनवाणी सुनने का अवसर, ये एक ऐसा रत्न है कि यह विधि गए न मिले, कि अगर ये इस प्रकार चला गया मतलब कोरा ही चला गया तो ये दोबारा जैसे चिंतामणि रत्न एक बार समुद्र में फेंका हुआ दोबारा नहीं मिलता, उसी प्रकार ये मनुष्य पर्याय भी दोबारा मिलना बहुत कठिन है। ये वर्ड से ही सब क्लियरली है। एक बार फिर सीधे भावार्थ पे आते हैं। भावार्थ में क्या लिखा है, आत्मा अने पर वस्तुओना भेद विज्ञान ने प्राप्त करवा माटे जिनदेव प्ररूपेला साचा तत्व नु पठन पाठन मनन करू जो ये, कि अगर मुझे अपने आत्मा का और किसका पर वस्तुओं का भेद विज्ञान, देखिए भेद विज्ञान जब भी होता है, ज्ञान होता है तो अपना होता है और भेद विज्ञान होता है तो दो चीज में होता है, क्योंकि भेद विज्ञान जब भी होगा तो उसमें दो चीज जरूरी है, एक स्वयं है और एक पर है। स्वयं और पर इन दोनों का होना इस भेद विज्ञान के, क्योंकि भेद विज्ञान किससे करोगे, स्वयं तो है ही लेकिन अलग करना भेद करना, तो भेद क्या, मैं अपने को तो भेद नहीं करूंगा, अलग किसको करूंगा, मेरी आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है और जितने भी द्रव्य है वो सब द्रव्य अलग है, तो भेद विज्ञान अगर मुझे करना है तो क्या करना है, भेद विज्ञान ने प्राप्त करवा माटे जिनदेव प्ररूपेला साचा तत्व नो पठन पाठन मनन करवो जो ये, कि जो प्रयोजन भूत तत्व है, जो सात तत्व है जिनसे हमारा प्रयोजन, जो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन पूरा होता है, उसका हमें पठन पाठन मनन करना चाहिए। अने संशय विप्रय तथा अनद्वसाय, ए सम्यक ज्ञानना त्रण दोषों ने दूर करी आत्मानु स्वरूप जानवो जो ये। क्या है संशय विप्रय अनद्वसाय, देखिए फुटनोट में लिखा है, संशय विरुद्ध अनेक कोटि स्पर्श ज्ञानम संशय, मतलब आ प्रमाणे छे के आ प्रमाणे छे एवं जे परस्पर विरुद्धता पूर्वक बे प्रकार रो ज्ञान तेने संशय कहे छे। मीनिंग अंधेरे अंधेरी रात में जैसे हम लोग जा रहे थे, एकदम से मुझे किसी पतली सी चीज ने स्पर्श किया, मुझे लग रहा है कि ये सांप है या रस्सी है, दो ज्ञान है मुझे, ये सांप है या रस्सी है, तो यहाँ तो जो दोनों ज्ञान है वो कुज्ञान है, कि वास्तव में मुझे निर्णय नहीं है अभी किसका है, कि ये सांप है कि ये रस्सी है, ऐसे संशय है मतलब शंका है मेरे अंदर अभी भी, उसे कहते हैं संशय। आ प्रमाणे छे कि आ प्रमाणे छे, मतलब जिनेन्द्र भगवान ने जो तत्व बताया है वो इस प्रकार से है कि इस प्रकार से, ऐसा जो तत्व है, ऐसा जो संशय है, ये मुझे परस्पर विरुद्धता पूर्वक क्योंकि वो दोनों, या तो वो सांप होगा या वो रस्सी होगी, दोनों तो होगा नहीं, तो आपस में विरुद्धता पूर्वक जो दे प्रकार नो ज्ञान तेने संशय कहे छे। उसके बाद विप्रय, विपरीत एक कोटि निश्चय विप्रय, वस्तु स्वरूप की विरुद्धता पूर्वक आ आमत छे एवं एक रूप ज्ञान तेनु नाम विपर्य छे, के मतलब वो था सांप और मैंने मान ली रस्सी, या वो थी रस्सी और मैंने मान लिया सांप। तो ऐसा जो उल्टा ज्ञान है वो उल्टा ज्ञान किस में आता है? विपर्य में। और तीसरा अनद्वसाय, कि मिथ्या लोचन मात्र अनद्वसाय है कि काई है। अब इसमें ना तो ये निर्णय हुआ कि ये रस्सी है कि ये सांप है, मतलब संशय की बात ही नहीं। संशय कब आएगा? कि जब पहले मुझे मालूम होगा कि हाँ ये सांप है कि रस्सी, ऐसा तो संशय की भी बात नहीं है। विपर्य की बात क्यों नहीं है? विपर्य में तो उल्टा मान ही लिया कि हाँ ये सांप ही है, ये रस्सी है, ऐसा उल्टा मान लिया। यहाँ मात्र कुछ है, कुछ पता नहीं है, बस कुछ है। एकदम से हम खड़े थे और हमारी आंख के सामने से कुछ निकल गया, हमें मालूम नहीं पड़ा, बस एक आभास सा हुआ कि अरे कुछ निकला। क्या निकला क्या नहीं निकला वो बात की बात, बस कुछ निकला। तो ऐसा ज्ञान जो है काई छे, एवो निर्धार रहित विचार, तेनु नाम अनद्वसाय छे। मतलब ऐसा निर्धारण के रहित, निर्णय के रहित जो ज्ञान है उसका नाम है अनद्वसाय। बराबर है? जैसे वापिस से हम खड़े थे पर हमारे सामने से कुछ निकला, ये हुआ सबसे पहला, ये क्या हुआ? अनद्वसाय। हमें मालूम भी नहीं चला कि क्या था क्या नहीं था, बस कुछ निकला। फिर किसी ने बोला कि हम तीन लोग खड़े थे तो किसी ने बोला कि कुत्ता निकला, या किसी ने नहीं नहीं कुत्ता नहीं था बिल्ली थी, नहीं कुत्ता था नहीं बिल्ली थी। तो ये संशय है क्या कि कुत्ता था कि बिल्ली थी? फिर बाद में किसी ने बोला नहीं कुत्ता, मतलब हमने निर्णय किया कि नहीं कुत्ता ही था, मतलब वो उल्टा ज्ञान कि निकली बिल्ली और हमने मान लिया कुत्ता। ऐसा तीनों तरह से कि ये जो तीन है, संशय विपर्य और अनद्वसाय, इन तीनों से रहित जो सम्यक ज्ञान है, और वो सम्यक ज्ञान क्या है? अपना स्वरूप, मेरा स्वरूप जो सम्यक ज्ञान, मतलब वास्तविक ज्ञान जो मेरा स्वरूप है, उस स्वरूप को मुझे आपो लख लीजिए। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। आगे अनद्वसाय सम्यक ज्ञान ना त्रण दोषो ने दूर करी आत्मानु स्वरूप जाणवु जोईए। कारण के जेवी रीते समुद्र मां डूबेलु अमूल्य रतन परी ने हाथ आवतु नथी, तेवी रीते मनुष्य शरीर उत्तम श्रावक कुल अने जिन वचनों नु श्रवण वगैरे सुयोग पण बीती गया पछी फरी फरी ने प्राप्त थता नथी। तेथी आ अपूर अवसर ना गुमावता आत्म स्वरूप नी ओळखाण अथा सम्यक ज्ञान नी प्राप्ति करी ने आ मनुष्य जन्म सफल करवो जोइए। ने सम्यक ज्ञान, ज्ञान हम सबको है, ज्ञान आपको भी है, ज्ञान मुझको भी है, ज्ञान छोटी से छोटी चींटी को भी ज्ञान है। ज्ञान किसको है? चींटी को भी ज्ञान है। जैसे कई हमारे को क्या होता है, गलतफहमी हो जाती है कि ज्ञान पंचेंद्रिय पने में ही आता है। ज्ञान पांच इंद्रिय होती है ना, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, फिर संगी असंगी। तो कई लोग बोलते हैं कि ज्ञान पंचेंद्रिय पने में ही आता है, लेकिन वास्तव में ज्ञान तो सबके अंदर ही ज्ञान है। अब जो मन आता है, मन कहाँ पे आता है? संगी पंचेंद्रिय। एक इंद्रिय में नहीं, दो इंद्रिय में नहीं, तीन इंद्रिय में नहीं, चार इंद्रिय नहीं, पंचेंद्रिय में, असंगी में नहीं, संगी में मन होता है। अच्छा, मन का कार्य क्या होता है? सच और झूठ का। मैंने शायद एक बार आपको पूछा था, मन का कार्य क्या होता है? सच और झूठ का विचार करना। बराबर है? मतलब हित अहित का, हित अहित का विचार करना, ये बराबर है। चलिए, अब उसमें थोड़ा सा ये बात है, हित अहित क्या है वो समझना चाहिए। चीटी कौन सी इंद्रिय है? नहीं, तीन इंद्रिय चीटी है। बराबर, चीटी तीन इंद्रिय है। एक एग्जाम्पल, अब चीटी यहाँ से जा रही थी, चीटी यहाँ से जा रही थी, आपने चीटी के आगे ऐसा हाथ रखा, चीटी क्या करेगी?
दूसरी तरफ जाएगी।
दूसरी तरफ जाएगी, क्यों?
फर्श का उसको,
उससे उसे क्या लगेगा? चलो हाथ तो छोड़ो, आगे आग जल रही है, आगे क्या है? आग जल रही है, चीटी चले जा रही है, तो सीधी आग में जाएगी?
लेकिन
स्पर्श का ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान से साथ में क्या है कि ये आग क्या करेगी? मुझे जलाएगी। तो हित अहित का विवेक उसको है कि नहीं? क्वेश्चन समझे?
हाँ, समझे। पंचेंद्रिय का भी
मैंने हमने अभी क्या बोला, मन का कार्य क्या है, हित अहित का निर्णय करना। अब चींटी जो तीन इंद्रिय का प्राणी है या दो इंद्रिय का कोई प्राणी है या चार इंद्रिय का कोई प्राणी है, आप उसको ला रहे हो, वो चल रहा है, आप उसके सामने आग रख दो, पानी रख दो, तो वो उसमें
वो खुद के प्राणों का घात होता है, उसका ज्ञान है
उसको अपन लेते हैं अभी। हाँ, उसकी बात में लेते हैं, पहले इसके एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है। वो फिर भी उसने छोड़ा, क्यों? क्योंकि उसको हित अहित का उसको भी मालूम पड़ा ना, हित मत अहित क्या है कि मैं इस आग में जाऊंगी तो क्या होगा, मैं जल जाऊंगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब दूसरी बात, आपने जो बोला कि जैसे वो लाइट में जाते हैं ना, वो पतंगे जाते हैं, वो जो अग्नि के अंदर वो कि वो बारिश के टाइम पे जो लाइट में काफी सारे पतंगे उड़ते हैं, वो वहाँ जाते हैं, वहाँ पे वो जलते हैं और उसके बाद में नीचे गिरते हैं, फिर वापस उठ के जाते हैं, तो वहाँ क्या है, वहाँ उनको एक एक मतलब जो उनकी इंद्रिय है वहाँ क्या हो रहा है, लाइट उसको ऐसी अच्छी लग रही है, जो रोशनी है वो उसको अच्छी लग रही है, तो बार बार मरण के भय के बिना, मतलब मरण हो रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको इतनी गृद्धता है कि वो उसके अंदर जा रहा है। जैसे कोई मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालता है, क्यों? शहद पाने के लिए, क्योंकि शहद उसको मधुमक्खी काट रही है, लेकिन फिर भी जैसे आपने नीचे इसमें स्वाध्याय में जो चित्र बना हुआ संसार दर्शन का, उसके अंदर कितना मतलब कि उस जीव को वो दो चूहे दिनों रात उसके डाली को काट रहे हैं, मधुमक्खियां उसको चारों तरफ से काट रही है, नीचे चार चार हजार मगरमच्छ लगे, फिर भी वो उस डाली को पकड़ के लटका हुआ है। क्यों लटका हुआ? उसको जो देव बुला भी रहे हैं कि इतना दुख है तुम्हें तो आ जाओ, इन दुखों से मुक्ति ले लो, लेकिन फिर भी क्यों लटका हुआ है? क्योंकि जो शहद की एक एक बूंद उसको गिर रही है, उसका राग उसके अंदर कि वो बूंद उसको इतनी अच्छी लगती है, जिसके कारण उसे इतना सारा दुख भी भाषित नहीं होता। तो वैसे ही ये हमारे बात है कि हमें चारों तरफ से दुख है ना, चारों तरफ से दुख ही दुख है, एग्जाम में कम नंबर आए तो दुख, जो मन चाहा कॉलेज जिसके अंदर हमने एडमिशन लेना था उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो दुख, मम्मी पापा ने जो चीज चाहिए थी वो नहीं दिलाई तो दुख, फोन का नया सेट आया वो नहीं मिला तो, मतलब हर तरह से अपनी अपनी कंडीशन लगा लेना सब अपनी तरह से, किसी को हर तरह से हम लोगों को दुख ही दुख है। तो इतना दुख है तो छोड़ क्यों नहीं देते, है ना? इतना दुख है और भाषित हो रहा है तो छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों? क्योंकि उस दुख के इतने दुख में से भी जो थोड़ा सा सुख मिल रहा है, जो वास्तविक सुख नहीं है लेकिन सुखाभास जो मिल रहा है, वो सुखाभास मुझे इतना ज्यादा पसंद है कि उसके आगे मुझे ये पूरा का पूरा दुख भी दुख रूप लगता नहीं है। तो इसके लिए इतना दुख मिलने के बाद भी मैं बार बार इसी कार्य में प्रवृत्त होता हूँ, बराबर है। अब अपनी जो चींटी वाली बात थी, वापिस से चींटी में मन है कि नहीं है, तो वो हित अहित का विचार करती है कि नहीं करती है?
अहित का नहीं, उसका प्राण जाता है वो
उसको, तो वो अहित ही हुआ ना। अच्छा चलो, आग 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 छोड़िए, चींटी यहाँ पर है और हमने किसी ने भी उसको फूक मारा या मतलब उसको मारने के लिए ऐसे अपन करते हैं तो भागती है कि नहीं भागती? भागेगी ना, तो उसको मालूम है ना कि अगर ये हाथ मुझ पर पड़ गया तो मैं मर जाऊंगी, तो वो मतलब मेरा ये हाथ जो है या जो भी चीज है वो मेरा अहित करने वाली है, तो वो अहित से दूर भाग रही है और कहाँ जाएगी? अपने घर में छुप जाएगी, जो भी उसका बिल होगा जहाँ भी वो होगी वो वहाँ सीधे भाग के वहाँ पे जाकर छुप जाएगी। तो उसके अंदर हित अहित का विवेक करने का निर्णय है कि नहीं है? अब इसमें ये बात आती है कि हित अहित का निर्णय मतलब क्या, कि यहाँ जो हित अहित की बात चल रही है वो बाहर के हित अहित की बात ही नहीं है। वास्तविक मन का जो कार्य है वो बाहर का हित अहित, तो आप एक पेड़ को लगाओगे, एक बेल लगाते हो, वो बेल भी जहाँ सहारा मिलता है उसी के अनुसार वो बढ़ती जाती है, वो अपने नहीं तो वो ऐसे ही फैल जाएगी, आपने उसको सहारा दिया तो सहारे के अनुसार बिल्कुल उसी हिसाब से बढ़ती है। तो चाहे एक इंद्रिय से लेकर कोई भी जीव हो, उसमें अपने शरीर आदि का हित अहित का विचार तो सबके अंदर है, लेकिन यहाँ जो मन का वास्तविक कार्य है वो कार्य अपने आत्महित का है, कि अब मेरी आत्मा का जो हित है वो वास्तव में किसके द्वारा होता है और आज तक मेरी आत्मा का हित कैसे हो रहा है। तो वो जो आत्महित का है वो वास्तविक मन का कार्य है। तो वो बाकी हित अहित का या सच्चे झूठे का बोलते, सच्चे झूठे का और हित अहित का विवेक तो हर किसी में है, लेकिन यहाँ जो मन का वास्तविक कार्य है वो कार्य है आत्महित का विवेक करने का। तो यहाँ जो बात आई कि हे जी तुझे अभी ये मनुष्य पर्याय भी मिली है, उसके बाद में तुझे सुकुल भी मिला है, कि ऐसा नहीं है कि तुझे मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई तो किसी नीच कुल में पैदा हुआ या ऐसी जाति में पैदा हुआ जहाँ मांस भक्षण आदि का कार्य होता है, तुझे उत्तम कुल भी मिला और मात्र कुल ही नहीं मिला, साथ में तुझे जिनवाणी सुनने का अवसर भी मिला, मौका भी मिला। तो अब तो क्या हुआ है कि खाना आपके सामने थाली में परोस के रख दिया है। अब मान लो किसी ने और तोड़ के मुंह तक ला भी दिया, लेकिन खाना तो मुझको ही पड़ेगा, है ना। मतलब क्या हुआ, खाना भी आ गया, हमें खाना बनाना है, सब कुछ हो गया। अब किसी ने बोला कि थाली रखी है तो तोड़ के ज्ञानी जनों ने उसको और उसके यहाँ तक ला दिया, उस तक विस्तृत कर दिया। लेकिन अब अगर वो उसमें वो छोड़ दे कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा तुम खा लोगे, तो उसकी भूख मिटने वाली नहीं है। अगर अपनी भूख मिटानी है तो भोजन तो स्वयं को करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे कहा कि तुम्हें सब तरह से उत्तम कुल उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है, तो अब हे जीव तू इस उत्तम अवसर को गवाना योग्य नहीं है। मोक्षमार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने लिखा है, खाली कोट में याद रखना, क्या लिखा है कि जिस प्रकार कोई दरिद्री को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो, चिंतामणि रत्न मतलब क्या कि जिससे आप जो मांगो वो मिल जाए, मतलब मांगना भी नहीं पड़ता है, आप खाली मन में विचार करो और वो चीज आपके सामने आ जाए, कितना अच्छा होगा ना, ऐसी चीज मिल जाएगी तो सब सब कुछ छुट्टी, कल से तो बस बैठ जाओ घर पे, सामने रख लो चिंतामणि रत्न और जो चाहा वो आ गया। तो क्या लिखा, ऐसा दरिद्री जो बिल्कुल गरीब व्यक्ति है, ऐसे गरीब व्यक्ति को चिंतामणि रत्न अगर अवलोकन को मिले और वो अपना मुंह फेर ले, मतलब किसी को अगर मैंने चिंतामणि रत्न दिया ऐसे हाथ में दिया और उसने अपने हाथ हटा लिए तो बताओ पागल कौन, उसके जैसा पागल कोई दूसरा नहीं। तो उसी प्रकार वहाँ कहा कि जिस प्रकार एक बड़े दरिद्री को, बड़ा दरिद्री मतलब बहुत बड़ा दरिद्री को चिंतामणि रत्न अवलोकन मात्र को मिले और वो ना अवलोके, उसी प्रकार किसी को मोक्ष मार्ग का सुगम उपदेश मिले और वो उपदेश को श्रवण ना करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे कही नहीं जाती। मतलब इतना सब तरह से अवसर हमें प्राप्त हुआ, उसके बाद में अवसर चूक जाऊं तो अब ये दाव चूकने योग्य नहीं है। चलिए समझ में आया, पांचवा बराबर है, वापस से मैं रीड करता हूँ एक बार, सीधे गाथा से देखिएगा, सिक्स नंबर चौथी ढाल छठे नंबर का श्लोक, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। इसलिए किस लिए, क्योंकि आज तक मैंने सब कुछ किया लेकिन अपनी आत्मा का ज्ञान ही नहीं किया, इसके लिए हे जीव जिनवेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों का अभ्यास कर, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लिख लीजिए, संशय विप्रय और इस मोह को छोड़कर अपने स्वरूप को देख, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर, और यह मनुष्य पर्याय सुकुल सुनि वो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उधरी समानी। कि एक बार अगर ये मनुष्य पर्याय ये कुल और ये जिनवाणी का अवसर सुनने का अवसर चला गया तो ये वापस से मिलने वाला नहीं है, बराबर है। चलिए सातों हेडिंग क्या है, सम्यक ज्ञान की महिमा अने कारण। छठी ढाल की हेडिंग क्या थी, ज्ञान ना दोष अने मनुष्य पर्याय वगैरह नी दुर्लभता। ज्ञान का दोष क्या था उसमें, संशय विप्रय और अनग्रसर, ये तीन ज्ञान के दोष बताए थे और मनुष्य पर्याय की दुर्लभता बताई थी। तो अब जो सम्यक ज्ञान हमें प्राप्त करना है उस ज्ञान की महिमा और उसका कारण बताते हैं। धन समान गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। धन मतलब रुपया पैसा, समाज मतलब ये अपना समाज, गज मतलब हाथी घोड़ा, राज मतलब राज्य, तो काज न आवे कि ये जितनी भी चीजें हैं ये सब तुझे कुछ कार्य में आने वाली नहीं है। ज्ञान आपको रूप बहे, एकमात्र जो ज्ञान है जो वास्तविक में अपना स्वरूप है, वो ज्ञान एक बार सत्यमय हो जाए तो फिर अचल रहावे कि वो फिर सदैव काल के लिए रहने वाला है। तास ज्ञान को कारण, उस समय ज्ञान का कारण स्वपर विवेक बखानो, उस समय ज्ञान का कारण स्वपर का विवेक कहा गया है। स्वपर विवेक बखानो मतलब स्वपर का जो भेद ज्ञान है वो भेद ज्ञान उस समय ज्ञान का कारण बताया है। कोटि उपाय बनाए भव्य, हे भव्य जीव करोड़ों उपाय को करके भी ताको उर आनो, ताको अर्थात उस समय ज्ञान को, उर अर्थात हृदय में, आनो अर्थात धारण करो। बराबर है, क्या लिखा है इन शॉर्ट में कि ये जितनी भी बाहर की चीजें हैं ये बाहर की चीजें तुझे कुछ भी कारण में आने वाली नहीं है, एकमात्र कार्य में आएगा तो सम्यक ज्ञान जो तेरा ज्ञान है। अभी कुछ समय पहले जो कौन बने करोड़पति आता ना, उसमें जब पंच मुष्टि वाला आया था 5 करोड़, तो उसका टैगलाइन क्या था, ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। जब उसका जो टैगलाइन था पंच लाइन, उसमें क्या था, ज्ञान ही आपको आपका वास्तविक हक दिलाता है। तो यहाँ तो अपन अपने उसमें लेते हैं कि वास्तविक बात है कि वास्तविक ज्ञान ही आपको जो हक, अब मेरा हक क्या है, ये राज कार्य धन कार्य ये मेरा हक नहीं है, मेरा हक क्या है, मेरा आत्मा मेरा स्वरूप मेरा वास्तविक हक है, वो हक आपको वास्तविक ज्ञान ही दिलाता है। तो कहीं से भी आप ढूंढ सकते हैं, बहुत तरह से आपको चीजें मिलती है, बस ये हमारी उस तरह की दृष्टि खुली होनी चाहिए। क्या कहा कि ये जो ज्ञान है वो एक बार वो ज्ञान सम्यक हो जाए फिर अचल रहा वे, फिर वो सदैव काल के लिए, अचल मतलब कभी भी फिर चलायमान नहीं होता। लेकिन यहाँ पर किस ज्ञान की बात है, एक ज्ञान है जो हम जान रहे हैं, हम जो जान रहे हैं ज्ञान कर रहे हैं, वो ज्ञान कैसा है, मिथ्या तो है लेकिन इंद्रियों से माध्यम से है, इंद्रियों के माध्यम से, और इंद्रियां किसके द्वारा प्राप्त होती है, हमें जो इंद्रियां है, हम कितने इंद्रिय हैं, पंच इंद्रिय जीव है, हमारे पास 5 इंद्रिय हैं। इंद्रियां किस कर्म के द्वारा, और सरल, इंद्रियां किस कर्म के द्वारा प्राप्त होती है,
नाम
कर्म, जिस कर्म के द्वारा शरीर प्राप्त होता है, 8 कर्म में शरीर किसके द्वारा प्राप्त होता है, नाम कर्म के द्वारा, नाम कर्म के द्वारा हमें शरीर आदि की प्राप्ति होती है। फिर उसमें वो अलग अलग चीज है कि पुण्य वाले से अच्छा शरीर मिलता है, किसी को कैसा शरीर मिलता है, वो अलग बात है। कॉमन रूप में नाम कर्म से शरीर की प्राप्ति होती है, तो ये इंद्रियां नाम कर्म के द्वारा हमें प्राप्त हुई। तो कर्म क्या है, जड़ है कि आत्मचेतन है, पक्का मालूम है, पक्का, अच्छा, कर्म जड़ है तो हमें दुखी कौन कर रहा है,
कर्म दुखी नहीं कर रहा है, देख
सकते, देख सकते, दुखी कौन कर रहा है,
वो हम लोग का,
बोलिए बोलिए, कोई वो नहीं है, जो मन में है बोलो तो सही। अच्छा चलो, कर्म जड़ है, बराबर है, अच्छा जड़ मुझे दुखी कर सकता है, जड़ चेतन को दुखी कर सकता है, तो फिर तो कर्म तो मुझे दुखी कर रहा है ना, कर्म ने मुझे दुखी किया ना, ज्ञानावरणी ने इतना आवरण डाला कि मुझे याद नहीं होता, या मेरा पाप कर्म का ऐसा उदय है कि मेरी दुकान नहीं चल रही है, या मेरे स्कूल में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, या मैं फेमस नहीं हो पा रही हूँ, पा रहा हूँ, मेरे पाप कर्म का ऐसा उदय है, तो किसने दुखी किया। चलिए, क्या था, जो कर्म है वो जड़ है और जड़ चेतन को कभी दुखी नहीं करता, वो दुख होता है जब हम उस जड़ की, जो जड़ की जो पर्याय हुई, जड़ की जो पर्याय हुई, उस पर्याय के साथ जो मेरा तन्मयपना आता है कि मैंने जो जड़ को अपना मान रखा है, तो उस मान्यता के कारण मैं दुखी हूँ। जैसे मैंने एक बार क्लास में आपको ये बताया था कि ये जो फोन है, मान लीजिए ये फोन जब तक मेरा है तब तक मुझे इसके गिरने से दुखी होगा, अगर ये फोन मैंने आपको सेल कर दिया एक मिनट पहले और उसके बाद ये गिर जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए इस फोन का, मुझे दुख होने वाला नहीं है। तो दुख उस चीज में नहीं था, उस जड़ में नहीं था, उस जड़ के साथ जो मेरा तन्मय पना जुड़ा हुआ है, जो मेरा ममत्व एकत्व पना जुड़ा हुआ है, उसके कारण दुख है। तो ये जो इंद्रियां है वो इंद्रियां तो जड़ के द्वारा प्राप्त होती है। तो ये जो मुझे ज्ञान हो रहा है, मैं आँख से जानता हूँ, कान से सुनता हूँ, जीभ से बोलता हूँ, ये जो ज्ञान है ये तो जड़ जड़ का ज्ञान है। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान है वो जड़ का ज्ञान है, लेकिन सम्यक ज्ञान जो है वो इस इंद्रियों से पार, इन इंद्रियों के अतीत जो वास्तविक आत्म स्वरूप का ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम वास्तव में सम्यक ज्ञान है। यहाँ सम्यक ज्ञान का मतलब अपन जो जान रहे हैं इंद्रियों के द्वारा जानने को नहीं लिया है, सम्यक ज्ञान का वास्तविक अर्थ है इन इंद्रियों से परे, इन जो पांचों इंद्रियों से परे जो ज्ञान, मेरा जो स्वरूप ज्ञान है, वो ज्ञान जब अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है और पूर्ण रूप से जानता है, तब वो वास्तव में सम्यक ज्ञान कहलाता है। समझ में आया? चलिए अब इसका भावार्थ, अन्वयार्थ तो ले हो गया है, भावार्थ पे चलते हैं। कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। भावार्थ, धन कुटुम्ब नौकर चाकर हाथी घोड़ा अने राज्यादि कोई पण पदार्थ आत्मा ने सहायक थता नथी। जैसे अपन बारह भावना में बोलते हैं ना कि चाहे कोई भी उतर के आ जाए तो भी कोई सहायता करने वाला नहीं है, उसी प्रकार की हे जीव तुझे कोई भी, चाहे धन है, कुटुम्ब है, नौकर चाकर हाथी घोड़ा राज्यादि, कोई भी बाहर का पदार्थ आत्मा ने सहायक थता नथी, पण सम्यक ज्ञान आत्मा नु स्वरूप छे। ते एक बार प्राप्त थया पछी अक्षय थई जाय छे, कि वो स्वरूप तो है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या दिया है, स्वरूप तो कहा पहले क्या बताया, सम्यक ज्ञान आत्मा नु स्वरूप छे, लेकिन वो स्वरूप अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ, इसके लिए अगली लाइन में अलग से लिखा, ते एक बार प्राप्त थया पछी अक्षय थई जाय छे, कि ऐसा नहीं है। इसमें दो बात, एक तो कि मुझे बाहर से लाना नहीं है, ये जो सम्यक ज्ञान है मुझे बाहर से लाना नहीं है, है तो मेरे अंदर ही, लेकिन मेरे अंदर होने के बाद भी मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुआ, समझे। ऐसा नहीं कि मुझे बाहर से लाना है, जैसे चना होता है, कच्चा चना है, उस चने को अपन सेकते हैं तो सेकने के बाद वो चना कैसा लगता है, मीठा लगता है, अच्छा लगता है। आप कच्चे चने को खाओ और एक पके चने को, सिके चने को खाओ, तो दोनों में वो कड़वा सा लगता था और ये मीठा लगता था, तो वो मिठास कहाँ से आई,
अंदर थी वो,
उस चने के अंदर थी ना, ऐसा तो था नहीं कि उसको सेकने से की है, वो कढ़ाई में सेका या रेत में सेका उसमें से वो मिठास आ गई। मिठास किस में थी, चने में थी, उसको सेकने से वो मिठास उसकी बाहर आ गई। तो उसी प्रकार इस आत्मा के अंदर ज्ञान, जो ज्ञान है वो आत्मा के अंदर है, जो मिठास जैसे उस चने की उस अवस्था में, कच्ची अवस्था में भी थी, उसी प्रकार आत्मा की हर अवस्था में ज्ञान है, लेकिन ज्ञान की पूर्ण अवस्था, मतलब उस समय ज्ञान की प्राप्ति मुझे अभी तक नहीं हुई है, मतलब वो चना अभी तक सिका
नहीं है,
नहीं है। वो चना अभी तक सिका नहीं है, और एक बार सिक जाएगा तो वो मिठास उसमें सदैव काल के, जब तक आप उसको खा नहीं दोगे जब तक उसमें वो मिठास बनी रहेगी। तो उसी प्रकार ये आत्मा का जो स्वरूप है, क्या लिखा, सम्यक ज्ञान आत्मानु स्वरूप छे, ते एक बार, स्वरूप तो है लेकिन अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, ते एक बार प्राप्त थया पछी अक्षय थई जाय छे, कदी नाश पामतु नथी, अचड़ एक रूप रहे छे, आत्मा अने पर वस्तुओनु भेद विज्ञान, भेद विज्ञान ते सम्यक ज्ञान नु कारण छे। सम्यक ज्ञान का कारण क्या बताया, स्वपर भेद विज्ञान, कि अपने स्वरूप का और पर का भेद विज्ञान ही वास्तविक आत्म ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का कारण है। तेथी आत्महितेच्छु, आत्महितेच्छु तेथी अर्थात इसलिए, आत्महितेच्छु भव्य जीवोए करोड़ों उपाय करीने आ भेद विज्ञान द्वारा सम्यक ज्ञान प्राप्त करवु जो ये। इसके लिए है जी,
नहीं,
उसमें भी ये बात बहुत सही है कि जैसे अंदर गुणस्थान की अपेक्षा से जब कथन आते हैं तो उसके अंदर छाई सम्यक्त की जो छूटने की बात है ना, उसमें प्रारंभिक जो सम्यक्त होता है ना, छयोक्षम सम्यक दर्शन होता है, वो सम्यक दर्शन पे आती है। सम्यक ज्ञान एक बार पूर्ण हो जाए उसके बाद वो नहीं छूटता। सम्यक दर्शन है वो एक बार होने के बाद वापिस छूट सकता है। सम्यक दर्शन एक बार हो जाए वो वापिस छूट सकता है, लेकिन उसमें भी ये नियम है कि जिसका छूटा उसको वापिस से होगा। आपको एक बार सम्यक दर्शन हुआ और किसी कारण से या किसी तरह से वो सम्यक दर्शन छूट भी गया, लेकिन ये निक्की हो जाएगा कि आपको पुनः वो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। वो सम्यक दर्शन में आता है जो उसकी जो प्रारंभिक अवस्था में छयोक्षम सम्यक दर्शन के उसमें अवस्था में जब वो एक बार होने के बाद वापिस से छूट भी जाता है। नियम नहीं है छूटने का, लेकिन छूट भी जाता है किसी किसी के। तो ऐसा सम्यक ज्ञान में नहीं होता। एक बार सम्यक ज्ञान पूर्ण हो जाए तो उसके बाद वो कभी भी छूटता नहीं है, वो हमेशा सदैव काल अचल एक रूप रहे छे। तेती आत्मितेच्छु भव्य जीवो हे, करोड़ों उपाय करीने कोटि उपाय बनाए भव्य तापो और अनो, कि करोड़ों उपाय करके भी यह भेद विज्ञान द्वारा सम्यक ज्ञान प्राप्त करवो, जो ये कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति जीव को करना चाहिए। क्लियर है? मैं वापस से गाथा से रीडिंग करता हूँ, श्लोक से गाथा में। धन समान गजबाज राज तो काज न आवे, कि ये जितने भी बाहर की संपदा है वो कुछ भी कार्य में आने वाला नहीं है। ज्ञान आपको रूप भय कि हे आत्मा का वास्तविक स्वरूप ज्ञान है, और एक बार वो प्राप्त हो जाए फिर सदैव काल अचल रहने वाला, स्थिर रहने वाला है। उस ज्ञान का कारण त्यास ज्ञान नो कारण स्वपर विवेक पखानो, कि उस ज्ञान का कारण स्वपर भेद विज्ञान है। इसके लिए है भव्य जीव कोटि उपाय बनाए भव्य ताको उर आनो, उसको अपने हृदय में धारण करो। बराबर है? अगली गाथा सम्यक ज्ञान, इसकी खाली अपन समय है अभी अपने पास 5-10 मिनट, इसकी रीडिंग करते हैं। सम्यक ज्ञान नो महिमा अने विषयों ने इच्छा रोकवानो उपाय, सम्यक ज्ञान की महिमा बताते हुए कहा, जे पूर्व शिव गए जाहि अरु आगे जे है, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ कहे है, कि जो आज तक पूर्व अर्थात पहले शिव अर्थात मोक्ष में गए, जाहि अर्थात फ्यूचर, और अरु सॉरी जाहि मतलब जा रहे हैं, अरु आगे जे है मतलब आगे जो जाएंगे, फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर कि तीनों काल, कि जो भी जीव आज तक मोक्ष में गए हैं, जा रहे हैं या आगे जाने वाले हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी, वो सब ज्ञान सम्यक ज्ञान की ही महिमा है। मुनि नाथ कहे हैं अर्थात कौन, मुनि के नाथ, मुनियों के भी नाथ, मुनि नाथ का ना मुनियों के भी नाथ कौन है, जिनेंद्र भगवान। कि मुनि नाथ मतलब यहाँ मुनिराज नहीं, यहाँ लिखा है मुनि नाथ मतलब जिनेंद्र भगवान, मुनियों के भी जो नाथ है ऐसे जिनेंद्र भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो भी आज तक मोक्ष में गए हैं, जा रहे हैं और जाएंगे, वो सब सम्यक ज्ञान के द्वारा ही, सफर भेद विज्ञान के द्वारा ही जाते हैं। विषय चाह दव दाव जगत जन अरनि धजावे, तास उपाय न आन ज्ञान घनगान बुझावे, कि ये जितने भी विषय की चाह है, विषय इन पंचेंद्रियों के विषय की जो इच्छा है, वो इच्छा तुझे कैसी है, जला रही है। जिस प्रकार अग्नि एक सूखे जंगल को, पुराना जंगल जो सूखा हुआ जंगल है उसको जैसे अग्नि जलाती है, उसी प्रकार ये विषयों की इच्छा भी तुझको क्या कर रही है, जला रही है। और जिस प्रकार जैसे जंगल जल रहा हो उस समय बरसात आए तो बरसात क्या करती है, उसकी अग्नि को रोक बुझाती है। लेकिन छोटी बरसात नहीं, बरसात का समूह, यहाँ जो लिखा है ना, क्या लिखा है अंतिम, ज्ञान घन घान, घन मतलब बादल और घान मतलब समूह, कि ऐसे बादलों का जो समूह है, वो बादलों का समूह रूपी जो बारिश है, वो बारिश ही उस जंगल की आग को बुझा सकती है। उसी प्रकार ये जो विषय चाह की जो अग्नि तेरे अंदर जल रही है, उस अग्नि का बुझाने का एकमात्र उपाय सम्यक ज्ञान ही है। इसके लिए हे जी तो सम्यक ज्ञान को धारण कर, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर। समझ में आया? चलिए अन्वय भावार्थ भूत, देखिए इसमें सम्यक चित्र भी बने हुए हैं क्लियर करने के लिए। नीचे देखिए जो लास्ट वाला चित्र है उसमें बनाया ना कि एक जंगल जल रहा है, उसके बाजू में वाले चित्र में बादलों से बरसात हो रही है। भावार्थ, भूत वर्तमान अने भविष्य ए त्रणे काल मा जे जीवो मोक्ष पाम्या छे पामशे अने वर्तमान मा तथा वर्तमान मा विधेय क्षेत्रे पामे छे ते आ सम्यक ज्ञान नो प्रभाव छे एम पूर्वाचार्यो ए बताव्यो छे। जेवी रीते दावा ना लथात वन मा लागेली आग त्यानी बधी वस्तुओ ने भस्म करी नाखे छे तेवी रीते पांच इंद्रियो संबंधी विषयो ने इच्छा संसारी जीवो ने बाळे छे अर्थात दुख आपे छे अने जेवी रीते घोगमार वरसाद ते दावण नल ने बुझावी नाखे छे तेवी रीते आ सम्यक ज्ञान ते विषयो ने इच्छा ने शांत करे छे नष्ट करे छे। ये बिल्कुल ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी कही, अगर लाइन से भी आप क्लियर करोगे तो बहुत क्लियरली है, लेकिन यही बात है ना, सिंपल भावों सिंपल लाइनों में भी भाव बहुत भरा हुआ है, गागर में सागर भरा हुआ कि लाइन बहुत सिंपल है, बिल्कुल शब्द जैसे हम बोलते हैं ऐसे शब्द है, लेकिन उन शब्द का भावार्थ इतना ज्यादा है कि जैसे हम जो है हम आज तक पंचेंद्रिय के विषय की इच्छा के अंदर हम क्या हो रहा है, जल रहे हैं, दुख को प्राप्त कर रहे हैं। जलते तो हम दिखते नहीं है, है ना, हम कहाँ जल रहे हैं, हम तो आराम से मजे हैं हमको, तो जलना मतलब यहाँ पे कि हम दुखी हो रहे हैं, दुख को प्राप्त हो रहे हैं, और इस दुख से दूर होने का वास्ते उपाय जो है वो सम्यक ज्ञान है। तो ऐसे सम्यक ज्ञान की हमको प्राप्ति करनी है, क्योंकि छह डारा के अंदर पूरा मोक्ष मार्ग हमको बताया है, चाहे इसको जैसे ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक कि वो मोक्ष मार्ग का प्रकाशित करने वाला है, तो क्या छड़ाला मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं है? टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, उस ग्रंथ का नाम मोक्ष मार्ग प्रकाशक दिया, तो क्या समयसार मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं है क्या? क्योंकि जिनवाणी ही जिसे कहते हैं वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है, कि जिनवाणी ही उसे कहते हैं जिसके अंदर प्रत्येक जगह अपने आत्म स्वरूप की बात हो, अगर जिनवाणी में से आत्मा निकाल दें तो वो जिनवाणी बचे ही नहीं। ये भी एक पेपर है और घर में आने वाला न्यूज़पेपर भी एक पेपर है, लेकिन उसको हम रद्दी में बेच देते हैं और जिनवाणी को हम मस्तक पर धारण करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें तो क्या है, उस न्यूज़पेपर का पेपर भी रद्दी, उस न्यूज़पेपर के अंदर आने वाली न्यूज भी रद्दी, और वो न्यूज़पेपर जाएगा भी रद्दी में, तो वो तो रद्दी है, लेकिन इसके जो ग्रंथ छपते हैं वो पेपर भी बहुत अच्छी क्वालिटी में छपते हैं, इसके भाव भी बहुत उत्तम भाव है, और उस भावों को समझ ले तो हमें किसकी उत्तम पद की प्राप्ति हो, इसके लिए जिनवाणी को हम सदा मस्तक पर विराजमान करते हैं। तो ऐसा ये जो तो हर बात चाहे छड़ाला हो चाहे समय सार हो, सब में मोक्ष मार्ग का वर्णन है, तो छड़ाला भी एक तरह से मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करती है। तो वापिस से पहली डाल में क्या बताया, चार गति के दुख, दूसरी ढाल में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ये कितनी बिल्कुल सोची समझी चीज है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले जैसे ना एक बिल्कुल छोटा नन्ना बालक है, उसी प्रकार एक मिथ्यात्वी अज्ञानी घोर संसारी जीव है, अब उसको तुम सीधे सम्यक चरित्र समझाने लग जाओ, उसको सीधे सम्यक दर्शन ज्ञान समझाने लग जाओ, तो वो ऐसा ही देखता रहेगा जैसे बाउंसर बॉल एक खिलाड़ी के बाउंसर चली जाती है और वो बॉल को देखता रहता है कि कहाँ चली गई। उसी प्रकार हम किसी छोटे बालक को 10th क्लास का 8th क्लास का एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अल्फा बीटा गामा समझाएंगे तो वो भी ऐसे समझाने वाले को पागल समझेगा, तो इसी के लिए यहाँ पे एकदम से उसे नहीं समझाया, पहले क्या समझाया, पहले उसको कि उसको दुख का निर्णय कराया कि वास्तव में तुझे इन चार गतियों में दुख है, ये जो मनुष्य गति है जो चार गति है देव त्रियंश नरक इन चारों गतियों के दुख बताए और उसको उन दुखों का निर्णय कराया। फिर उसके बाद अगली ढाल में दुख का निर्णय हो गया तो वो दुख का कारण क्या है, उस दुख का रीजन क्या है, मैं क्यों दुखी हूँ, तो उस दुख का रीजन उसको बताया कि इन कारणों से तू दुखी हो रहा है, अब दुख भी नक्की हो गया, दुख का रीजन भी पता चल गया, तो अब उसका सॉल्यूशन कि जो मुझे प्रॉब्लम मिली है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो वो जो सॉल्यूशन मिला कि वो सॉल्यूशन है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो उसमें सबसे पहले तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन किया, फिर चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन किया, फिर जब इस जीव को वैराग्य बढ़ता है तो उस वैराग्य को और बढ़ाने के लिए पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का स्वरूप समझाया, फिर अंतिम ढाल में कि जो अंतिम अवस्था है सम्यक चारित्र की अवस्था है, उस सम्यक चारित्र को पूर्णता से 13वें गुण स्थान से लेकर अंतिम मोक्ष तक 14वें गुण स्थान तक लेकर दौलत राम जी गए हैं। तो पहले गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान तक बस हमको निकालना आना चाहिए। हम ऐसे पढ़ पढ़ के चले गए तो मतलब नहीं है। हमारी क्लास तो हम बिल्कुल आराम से चल रही है ना, कि बिल्कुल समझ समझ के चलानी है। ऐसा नहीं है कि हमें कोर्स कंप्लीट करना है, समझ समझ के करना है। तो इसके अंदर भी पूरा मिथ्यात्व से लेकर प्रमत्य विरत, मतलब हम ढाल बाई ढाल हम अपने गुणस्थान पे चलेंगे कि हम अब धीरे धीरे गुणस्थान बढ़ रहे हैं। मिथ्यात्व आए, सम्यक मिथ्यात्व आए, फिर हमने विरत हुआ, देश विरत हुआ, फिर ये जब सम्यक ज्ञान की बात आई, जब प्रमत्त अप्रमत्त संयत विरत में जब झूलने वाली अवस्था आई, फिर उपशांत मोह आएगा, क्षीण मोह आएगा, फिर संयोग केवली आएगा और अंत में अयोग केवली अवस्था इस जीव के आएगी। ऐसे 14 गुणस्थानों का भी इसके अंदर वर्णन है। तो इसके लिए हम अब तक जो दुखी है उन दुखों से मुक्ति पाने के लिए हमें सम्यक ज्ञान को धारण करना चाहिए। तो आज हमने 7वां और 8वां समझा है, अगली क्लास में फिर 9 से प्रारंभ करेंगे। चलिए संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, इसके लिए दिन पानी माँ को वंदना शत बार Thank you.